بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ہمارے حضرت دامت برکاتہم کا ایک وعظ جس کا عنوان ہے تصوف کی روح اس میں سے پڑھ کر سنائی جا رہا ہے حضرت مرزا مظہر رحمت اللہ علیہ اور شاہ غلام علی رحمت اللہ علیہ کا عجیب واقعہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی خدمت کیا کرتے تھے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نازک مزاج تھے اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ کیا کرتے تھے اور یہ پکڑ برمحل ہوا کرتی تھی ایسا نہیں تھا کہ جب جی میں آیا بلا وجہ ڈانٹ دیا ایک مرتبہ شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنکھا کر رہے تھے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے ناراض ہو کر فرمایا کہ کیا ہاتھ میں طاقت ہے یا نہیں شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ کی طرف توجہ کی اور پنکھا زور سے کرنے لگے
پنکھا ہاتھ والا تو پہلے کہا کہ ہاتھ میں طاقت ہے یا نہیں دونوں نے ذرا زور سے کرنا شروع کیا
شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ کی طرف توجہ کی اور پنکھا زور سے کرنے لگے حضرت فرمانے لگے کہ کیا اڑانے کا ارادہ ہے شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکل گیا کہ حضرت نہ ایسے بنے نہ ویسے بنے بس صرف اتنا ہوا
نہ ایسے بنے یا نہ ویسے بنے اس کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ کرتے ہیں تو بھی آپ کو شکایت ہوتی ہے زور سے کرتے ہیں تو بھی آپ کو شکایت نہ ایسے بنے نہ ویسے بنے تو تعلقات کی بات ہے خادم خاص تھے پھر حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ ان کا خیال بھی کرتے تھے اس لیے کہ سید تھے تو جہاں تعلقات ہوتا ہے تو وہاں جرت کر کے آدمی کوئی بات کہہ بھی دیتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص یہ کام کرے تو یہ کہہ دیا کہ حضرت نہ ایسے بنے نہ ویسے بنے لیکن ناراض ہو گئے جی
بس صرف اتنا ہوا حضرت ناراض ہو گئے اور نکال دیا اس لیے کہ اصلاح کے لیے اس کی ضرورت تھی ان کا کوئی مرض شیخ کے سامنے ہوگا شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی سچے طالب وہ برابر مناتے رہے اگر ہمارے شیخ ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے تو شاید ہم خانقاہ ہی چھوڑ دیتے وہ سچے مرید تھے ان کو یہ احساس تھا کہ اصلاح کے بغیر آخرت میں کامیابی نہیں ہوگی اور بغیر شیخ کی توجہ کے میری اصلاح ممکن نہیں ہے اس لیے خانقاہ میں پڑے رہے اور مناتے رہے کئی دن کے بعد شیخ راضی ہوئے واپس خدمت میں لگ گئے اور اللہ تعالیٰ نے سلوک طے کرا دیا جس دن حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دی تو فرمایا کہ غلام علی جو سختی میں نے تمہارے ساتھ کی وہ تمہارے فائدے کے لیے کی جس مقصد کے لیے آپ آئے تھے اس کا یہی تقاضا تھا آپ اصلاح کے لیے آئے تھے تزکیہ کے لیے آئے تھے اس لیے ایسا کرنا پڑا اب جاؤ کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا نام پوچھے تو بتلا دینا حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دلچسپ واقعہ
اصل میں مشائخ کے یہاں جب ہم جاتے ہیں تو ہماری سوچ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی سرجری میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس ڈاکٹر سے ہمارا کتنا ہی تعلق کیوں نہ ہو لیکن سرجری کے بارے میں ہماری سوچ ہوتی ہے کہ بھئی ڈاکٹر صاحب اس وقت سرجری میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بحیثیت ڈاکٹر کے ہیں بحیثیت دوست کے نہیں تو وہاں جانے سے پہلے فون کر کے پوچھیں گے کہ میں آ سکتا ہوں پھر اگر وہ کہے کہ ہاں آ جائیے تو پوچھیں گے कि मैं डायरेक्ट आपके दफ्तर में आपके सर अंदर कमरे में आ जाऊं या रिसेप्शन के पास जाऊं। इसी तरह वकील, इसी तरह आर्किटेक्ट, जितने भी शोबे होते हैं, तो इन दोनों की ये जो दो हालतें हैं उसमें हम फर्क करते हैं कि इस वक्त ये हमारे दोस्त हैं मगर वहां दोस्ती तो है मगर वहां उनका रोल अलग है। और वो अगर हमें कह देते हैं कि फोन पर कि इस वक्त मैं आपसे नहीं मिल सकूंगा, तो हमें खोटा नहीं लगता। और अगर वहां चले गए और उन्होंने कहा कि भाई इस वक्त तो मेरी सर्जरी है, हमें खोटा नहीं लगता। उलमा और मशाइक के साथ हमारा ये मामला नहीं है। हम ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि उलमा के भी काम होते हैं, उनको भी सबक पढ़ाना होता है, उन्हें भी कुछ लिखना पढ़ना होता है, इदारे की कुछ जिम्मेदारियां होती है, उनको भी दफ्तर में बैठना होता है। इसलिए हम न फोन करते हैं न इजाजत लेते हैं, आ धमकते हैं और चाहते ये हैं कि हमारे सारे तकाजे पूरे हों, इसी वक्त बात भी करें हमारे साथ। और अगर ये कहा कि इस वक्त तो मेरा सबक है तो खोटा लगता है, तो दूसरी जगहों पर खोटा क्यों नहीं लगता, यही खोटा क्यों लगता है मदारिस के अंदर ही? इसलिए कि आप खोटे हैं, आप खोटे हैं इसलिए खोटा लगता है। आपका दुनियादारों के साथ और दीनदारों के साथ डबल स्टैंडर्ड है। दुनियादारों की आपके दिलों में अजमत है, दीनदारों की अजमत नहीं है। जो दुनिया के काम में लगे हैं उनकी अजमत है, उनके सारे एटिकेट्स को सामने रखकर काम करते हैं। दुनिया वाले दीन वाले होते हैं, उनके कोई उसूल नहीं। तो हमें खानकाहों का, मदारिस का मालूम नहीं होता। एक दिन के सबक की गैर हाजिरी जो है उसकी वजह से उस्ताद पर कितना टेंशन आ जाता है सबक का, वो आपको पता नहीं होता। 10 मिनट उस्ताद लेट जाता है तो तालिब इल्मों का कितना नुकसान होगा। आपकी औलाद नहीं, किसी की तो वो औलाद है ना, जो घर से बिल्कुल फारिग होकर इसी काम के लिए आई हुई। इसलिए उलमा के भी औकात मालूम करने के किसी और से कि उनके क्या क्या टाइम है, और उस वक्त नहीं जाने का जब उनकी मशगूली का टाइम हो, आराम का टाइम हो, मुताला का टाइम हो। खैर, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमें मालूम नहीं होता, इसलिए हम जब जाते हैं किसी खानकाह में और किसी शेख के किसी रवैये को देखते हैं तो हमें इश्कालात होते हैं कि यार इतनी छोटी बात पर इतना बरस पड़े हो, इतना डांटा। ये क्या शेख होंगे कि जिनको अपने ऊपर जब्त नहीं है वो दूसरों को क्या सिखाएंगे? इसलिए कि हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि ये जिसके ऊपर गुस्से हुए हैं ये मेहमान नहीं है, ये पेशेंट है। क्योंकि इस इलाज से हम वाकिफ नहीं ना, तो आप हॉस्पिटल में विजिटर के तौर पर जाएंगे तो डॉक्टर आपको कुछ इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाएगा, लेकिन वो पेशेंट को तो आपके सामने भी लगाएगा ना। इसलिए वो इंतजार करता रहेगा कि जब सब नहीं होंगे तब इलाज करूंगा, तो इलाज कैसे होगा? तो जिस वक्त जो काम करना है वो तो करना ही पड़ता है। हजरत मौलाना अबरार अहमद साहिब रहमतुल्लाह अलैह को मैं एक मरतबा मिलने के लिए गया, शफकत फरमाते थे हजरत, तो तवज्जो देते थे, तो नफ्स बहुत खुश होता था। मेरी बिल्कुल जवानी थी कि भाई इतने बड़े आलिम और मुझे मेरी तरफ मुतवज्जे होते हैं, मुस्कुरा के बात करते हैं, करीब भी बिठा देते थे कि यहां बैठ जाओ। एक मरतबा में ब्लैकबर्न उन्हें मिलने के लिए गया तो ऐसे ही छोटे कमरे में दो चार आदमी बैठे हुए थे, तो मेरे उस्ताद भी उनके सामने बैठे हुए थे, मेरे एक उस्ताद। तो मुझसे मौलाना ने फरमाया कि तुम यहां मेरे पास आ जाओ। वो जो कुछ नीचे छोटा सा गद्दा बिठाया हुआ था तो मुझे थोड़ा तामुल हुआ कि मेरे तो यहां। तो मौलाना समझ गए, तो मौलाना ने फरमाया कि तुम आ जाओ, तुम्हारे आने से पहले मैं इनसे पूछ चुका हूं और इनको कह चुका हूं कि मैं उसको यहां बिठाऊं तो कोई हरज तो नहीं। तो ऐसी शफकत फरमाती थी। तो मैं लंदन गया मिलने के लिए, तो हजरत मौलाना तशरीफ फरमा थे, दो चार आदमी आगे पीछे दाएं बाएं थे, तो बिल्कुल खुश्क मुसाफा गया मेरे साथ, खुश्क बिल्कुल, न चेहरे पर मुस्कुराहट न खैर खैरियत, बस मुसाफा करके फिर काम में लग गए। तो मुझे ख्याल आया कि मशगूल है, अभी मेरी तरफ तवज्जो करेंगे और हमेशा की तरह छेड़छाड़ भी करेंगे कुछ बातचीत, लेकिन बिल्कुल नहीं। और जब तक हम वहां रहे, फिर एक जगह खाने के लिए भी गए, फिर वापस आए, कैफियत वही रही, यहां तक कि मुझे दिल में ये वसाविस आने लगे कि मेरी कोई शिकायत हजरत तक पहुंची है या मुझसे कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से हजरत मुझसे नाराज है, अब करूं क्या, इसलिए कि बारोब शख्सियत थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आज तो मुश्किल है, यहां से वापस जाना है, कुछ करना पड़ेगा, ऐसा दिल में ख्याल आया। जब हम रुखसत के लिए चार पांच साथी थे जब उठे, तो सबसे मुसाफा कर लिया और फिर कहा कि आप हजरत चले जाइए, सलीम तुम इधर आइए। तो मैं करीब गया तो फरमाया कि मेरे दिल में कोई तकद्दुर नहीं है, मेरा दिल उसी तरह साफ है जैसे पहले साफ था, लेकिन दिल में उजब और किब्र को आने में देर नहीं लगती, इसलिए इस मरतबा खिलाफ मामूल तुम्हारे नफ्स को जरा ठिकाने पे रखा, ये है बात, समझ में आ गया। तो ऐसा हमें समझना नहीं चाहिए यार, वहां तक गए बेरुखी से बात की, कुछ तवज्जो भी नहीं की, तो होता है, अपने होते हैं तो अपनों की इसलाह करते हैं, ये तो अच्छी बात है, मुरीद न हो तो भी इसलाह करते हैं अपनों की। तो ये जो, इसीलिए मैंने वो बीच में एक जुमला कहा है यहां बयान में, इसलिए कि मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के वाकयात वगैरह सुनते हैं तो सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है, और ये कि छोटी छोटी बात में नहीं, ये डांट बरमहल हुआ करती थी, वो दूसरे लोगों को लगती थी कि ये बेमहल है और बेजा है, लेकिन जिसकी इसलाह हो रही होती थी वो जानता था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं।
अगर ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह से भी हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा नाराज हो गए और उन्हें मजलिस में शिरकत से रोक दिया, शेख का हुक्म था, क्या कर सकते थे, मगर बड़े आशिक जार थे, एक शेर लिखकर भेजा, उधर वो दर न खोलेंगे इधर मैं दर न छोड़ूंगा, उधर वो दर न खोलेंगे इधर मैं दर न छोड़ूंगा, हुकूमत अपनी अपनी है, कहीं उनकी कहीं मेरी। मेरे भाई, जब ऐसा जज्बा हो और ऐसी मोहब्बत हो तब काम बनता है,
चाहे वो मुतवज्जे हो न हो, मैं यहां से नहीं जाऊंगा इस उम्मीद पर कि वो जरूर मुतवज्जे होंगे, इसलिए अगर मैं यहां से चला गया तो मैं तो खाली रह जाऊंगा। जी,
जब ऐसा जज्बा हो और ऐसी मोहब्बत हो तब काम बनता है। आज हम इस मुबारक महफिल में हजरत की इस खानकाह में ख्वाजा साहिब रहमतुल्लाह अलैह का, जो मौलाना भी नहीं थे, मुफ्ती भी नहीं थे, कारी भी नहीं थे, इज्जत और एहतराम के साथ तज़किरा कर रहे हैं और इन्हें अपने लिए इस्लाह और तज़किया के बाब में उसवे हसना करार दे रहे हैं। ये मर्तबा अपने आप को मिटाने से हासिल होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तू को इतना मिटा कि तू न रहे, तेरी हस्ती का रंगो बू न रहे, हू में इतना कमाल पैदा कर कि हू तो रहे तू न रहे। मेरे महबूब हाजी साहिब रहमतुल्लाह अलैह का एक अजीब महफूज, ये है दवा में जिक्र कि हू में इतना कमाल पैदा कर के हू तो रहे तू न रहे, न तेरी हस्ती रहे न तेरी हस्ती का रंग गोबू। मेरे हाजी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे फरमाया था कि बेटा, अपने आप को इतना मिटाओ कि तुम्हें मिटाने का एहसास भी न रहे। दोस्तों वो मिटाना ही क्या हुआ जिसमें अपने आप को मिटाने का एहसास बाकी रहे। अगर ये ख्याल रहे कि मैं कुछ हूं और मैंने अपने आप को मिटाया है, ये मिटाना ही क्या हुआ। और हाजी साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मेरे हजरत मसीहुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह पूछते थे कि मिटाना क्या है, फिर फरमाते कि पाना है। मिटाने से आदमी बहुत कुछ पाता है, मिटाना क्या है, पाना है। और फिर पूछते थे कि पाना क्या है, फिर जवाब में फरमाते थे कि मिटाना है। इंसान खुद को मिटाने से बहुत कुछ पाता है। अमल की नीयत से मवाइस सुनो,
बस ठीक है।
अमल की नीयत से मवाइस सुनो तो बुरी सोहबत से बचना है और अच्छी सोहबत का एहतमाम करना है, बिलखसूस इन हजरात की जो अरबाब मारिफत हूं और उनमें भी अपने शेख की सोहबत का बहुत एहतमाम करना चाहिए। अपने शेख की खानकाह में हफ्ते में एक मरतबा या महीने में एक मरतबा आ गए ये काफी नहीं है। इसके साथ मवाइज से भी इस्तेफादा करो। हजरत के मवाइज मैंने पढ़े भी हैं और सुने भी हैं। ये हजरत मुफ्ती अहमद साहिब खानपुरी दामत बरकात उनकी खानकाह में वाज हुआ था तो उनका तस्किरा है कि हजरत के मवाइज मैंने पढ़े भी हैं और सुने भी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी एक सालिक को जरूरत पड़ती हो और हजरत उसकी तरफ मुतवज्जे न करते हो। अहादीस के असबाब पढ़ें और बार बार पढ़ें। हजरत के मवाइज सुने और बार बार सुने मगर अमल करने की नीयत से। आजकल हम बयानात को तफरीह तबा के लिए सुनते हैं, लुत्फ अंदोज होने के लिए सुनते हैं। बहुत अच्छा बयान था, बहुत मजा आया, इसमें भी शॉपिंग करते हैं। और अल्लाह ताला यूट्यूब की बुराइयों से बचाए, अल्लाह ताला मोबाइल के नुकसान से बचाए। मोबाइल में वो सादा मोबाइल तो ठीक है लेकिन ये जो स्मार्टफोन है उसकी तो जरूरत ही नहीं। मैंने किसी से पूछा कि यहाँ स्मार्टफोन को क्या कहते हैं, यानी इंडिया वाले स्मार्टफोन को क्या कहते हैं, कहने लगे कि सादे फोन को छोटा कहते हैं और स्मार्टफोन को बड़ा कहते हैं। मैंने कहा कि काम भी तो बड़े करवाता है।
बस भाई इस्लाह की जो फिक्र है वो हमें पैदा करनी चाहिए। ये बुजुर्गों की तालीमात की रोशनी में उन्हीं की बरकतों से ये बातें कही गई हैं और अब माशाल्लाह उन्हीं की दुआओं की बरकत से, उन्हीं की चाहतों से हजरत लुधियानवी रहिमहुल्लाह ताला का इंतकाल जो है वो उस वक्त हुआ जब मेरी उम्र तकरीबन 33-34 साल की होगी। तो इंतकाल से पहले हजरत ने मुझसे एक मरतबा फरमाया कि तेरी उस वक्त तो सीडी नहीं थी कि तेरी कैसेटें बयानों की कराची मेरे पास भेज दे और मैं मेरी निगरानी में तेरी तकरीरों पे काम करवाऊंगा। लेकिन अब अपनी हैसियत तो अभी भी कुछ नहीं है तो उस वक्त तो, मगर ये उनकी एक चाहत और तमन्ना थी, ये उसी की बरकत है, अपना कुछ नहीं है, उनकी चाहत और तमन्ना थी, उसकी बरकत से ये चीज वजूद में आई। तो हमारे ना अहल होने के बावजूद भी बड़े जब हमसे खुश हो जाते हैं और हमसे उनकी तमन्नाएं वाबस्ता हो जाती हैं तो अल्लाह ताला शानहु फिर हमारी ना अहलियत को नहीं देखते। जो लोग तमन्ना करते हैं उनकी अहलियत को देखकर उनकी तमन्ना को अल्लाह पूरा फरमाते हैं। तो ये पढ़ना चाहिए और पढ़ करके नोट करना चाहिए कि हमें बहैसियत मुरीद के अपनी इस्लाह कराने के लिए क्या करना है और फिर उस रास्ते पर चलें। शुरू शुरू में ठोकर भी खाएंगे, गिर भी जाएंगे, फिर उठेंगे, गिर जाएंगे, फिर उठेंगे। बच्चा भी तो इसी तरह चलने दौड़ने लगता है। तो अगर बच्चे को कुछ समझ होती और वो उस समझ की वजह से वो ये कहता है कि नहीं मैं तो सबके सामने गिर जाऊंगा तो शर्म आएगी, इसलिए मैं तो उस वक्त चलूंगा जब, तो कभी नहीं चल सकेगा, बल्कि माजूर हो जाएगा बैठे रहने की वजह से। इसलिए अपने आप को मिटाना चाहिए, अपने आप को पेश करना चाहिए। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते थे कि वो मुरीद ही किया जिसे कुछ कहने से पहले शेख को सोचना पड़े कि कहूं कि न कहूं, तो मुरीद ही किया है वो। और अब हमारे जमाने में अक्सर जगहों पर यह हाल है कि मशाइख अब तालिब हो गए हैं। मैं ये बुरे माने में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, तालिब का मतलब है कि भाई कोई बात नहीं, अब ये लोग तलब लेकर के नहीं आते तो हम ही तलब लेकर इनके पास जाते हैं और इनको प्यार मोहब्बत से जोड़ जोड़ के रखते हैं ताकि कुछ ना कुछ इनकी जिंदगी में दीन आ जाए। तो खिलाते पिलाते भी हैं, पैम्पर भी करते हैं, खैर खैरियत भी पूछते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, और इसमें भी शैतान जो है बहुत से लोगों के दिलों में वसाविस डाल देता है बाज़ मशाइख के बारे में कि यार देखो ना ये बात नहीं, वो हमें किसी तरह कभी किसी तरह ही है। जैसे बिगड़ा हुआ बेटा होता है तो बाप कैसे, बाप तालिब बन जाता है फिर, और उसे तारीफ कर करके प्यार कर करके किसी तरह के भाई कम से कम जहां तक बिगड़ा है उससे आगे तो न बिगड़े। तो ये तो मशाइख की इंतहा दर्जे हमारे ऊपर शफकतें हैं। मैंने ऐसे मशाइख देखे बड़े बड़े अकाबिर, जो मेरे अकाबिर हैं, मैंने देखा कि बहुत शफकत करते हैं और जोड़ जोड़ के रखने की कोशिश करते हैं लोगों को किसी तरह, लेकिन उनकी जिंदगियों में जुहद देखा, उनकी जिंदगियों में इस्तिग्ना देखा, उनको किसी की मालूमता की कोई परवाह नहीं, और मौका आता है तो हक बात भी बहुत जोर से कह देते हैं। जब नजर आता है कि भाई यहां कोई कॉम्प्रोमाइज की शक्ल नहीं है, तो वही जिसको कल पंपर कर रहे थे आज जो है बहुत सख्ती के साथ उसके साथ डील कर रहे हैं। तो भाई फिक्र करो, अपने आप मिटाना तो पड़ेगा, आप अपने आप को मिटाना तो पड़ेगा। फुटबॉल का खिलाड़ी बनना चाहते हो तो ट्रेनर के पास जाके मिटाना तो पड़ेगा कि आप ट्रेन कीजिए मुझे, कि मैं ऐसे ही बन जाऊंगा। बॉक्सर बनना है तो किसी ट्रेनर को ढूंढना पड़ेगा, होते हैं ना ट्रेनर कि इन्होंने इतने वर्ल्ड चैंपियन बनाए। इल्म हासिल करना है तो किसी के सामने झुकाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो ये तो सबसे बड़ी दौलत ये है कि दिल साफ हो जाए और दिल के साफ होने के बाद फिर अल्लाह की मोहब्बत उसमें उतर जाए, पहले तखलिया हो जाए फिर तहलिया हो जाए, और बस ये है तज़किया, और उसके बाद फिर दोनों जहान की फलाह नसीब हो जाए। सबसे बड़ी चीज है ये। तो इसके लिए हम क्यों थोड़ा बहुत मिटाते नहीं, मिटाना चाहिए अपने आप को। जो नसीहतें की जाए उन नसीहतों की तरफ ध्यान देना चाहिए, उन नसीहतों पे अमल करना चाहिए। नफ्स जो चालाकियां बताता है उन चालाकियों पर चलना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला शानू हमारे ऊपर फजल फरमाए। हमें करना ये है कि बजाय इसके कि हम नफ्स के साथ मिल जावे और शेख को धोखा दे, हमें शेख के साथ मिलकर के नफ्स को धोखा देना चाहिए। मैं मदरसे में बच्चों को कहा करता हूं कि आप नफ्स के साथ हो जाते हैं और मदरसे के कानून तोड़कर मुंतजमीन को और असातिदा को नाराज करते हैं, आप बुरे नहीं है, बुरा आपका नफ्स है, तो उसे ठीक करने के लिए आप मुंतजमीन के साथ हो जाओ और उसकी मुखालफत करो, और अगर वो आप पर गालिब आ जाए तो मुंतजमीन को कह दो कि कल मुझसे गलती हो गई है, ताकि वो कोई सजा तजवीज करे तो नफ्स पर बोझ पड़े। अल्लाह ताला शानहु में हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको सेहतों के साथ रखे, आफियतों के साथ रखे। हमारे अहमद भाई कोला भी बीमार चल रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं, उनके टेस्ट्स हो रहे हैं, दुआ फरमाए अल्लाह आफियत नसीब करे। हमारे मौलाना हनीफ रवि द्रवी हैं, मुहिब महबूब हैं, मैनचेस्टर में आते रहते हैं, अच्छे आलिम हैं माशाल्लाह, دین کی فکر رکھنے والے. ان کے بردر ان لوگ کی اہلیہ کا گزشتہ کل انتقال ہو گیا اچانک. ولادت کے دوران کوئی گڑبڑ ہو گئی اور اس میں بچہ بھی چلا گیا اور وہ بھی بیچاری چلی گئی. تو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ جنتے ہوئے جو عورت دنیا سے جاتی ہے وہ جنت میں جاتی ہے. تو جانے والی کے لیے تو بہت اچھا ہے, لیکن پیچھے جو باپ رہ گیا, شوہر رہ گیا, بچہ بھی چلا گیا, بیوی بھی چلی گئی, چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے پتہ نہیں, تو ان کے لیے بھی دعا کیجیے, مرحومہ کے لیے بھی کیجیے اور جو زندہ رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی کیجیے. اور جتنے بیمار ہیں سب, ہر دعا میں یہ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما, سب پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, اور یہ اللہ جو موت کے قریب ہیں ان کو حسن خاتمہ نصیب فرما, اور یہ اللہ جو مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, اور یہ اللہ جو دین سے دور ہیں ان کو دین سے قریب کر دے. یہ پانچ چیزیں تو ضرور مانگنے کی, بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, جو دین سے دور ہیں انہیں دین سے قریب کر دے, موت کے قریب ہیں ان کو حسن خاتمہ نصیب فرما, اور جو انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. یہ پانچ کیٹیگری کے لیے تو ہمیشہ دعا کرو. اس میں تقریباً سب کچھ آ گیا, اور یہ پوری امت کے لیے دعا ہوگی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.